भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेत् मुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके नम ब्राह्मणे देवाय गोब्राह्मणे हिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः श्रीमद्भागवतम स्कंद 5 अध्याय 9 श्लोक 13 और 14। पहले आपको सूचना है, थोड़ा कृपा करके आगे का तरफ बैठिए, जो बाद में आएंगे पीछे बैठेंगे। भक्त लोग को पीछे का तरफ अभी जा रहे हैं, हम देखते हैं फिर महाराज लोग जब भी कथा करते हैं सभी को बुलाना पड़ता है आगे आइए, इतना स्पेस खाली है। जो बाद में आएंगे आधा मिलेगा, जो आगे आता अभी सामना में प्रसाद मिलेगा तो कितना आगे आएंगे, पीछे वाला पहले आएंगे। चालू कर दें पहले प्रसाद बांटना, पहले आप लोग का सामना में बैठना चाहिए, बाद में जो आते हैं पीछे बैठना चाहिए। कथा पे बाद में आते हैं तो उनको आधा मिलता है, अभी पहले जाओगे तो आइटम सभी मिलेगा, 26 आइटम बना हुआ आज लंबा लाइन पहले, सही। एक घंटा लेट में आओगे तो 12 आइटम मिलेगा, नहीं तो बाहर मिलेगा। दो श्लोक है, श्लोक तो ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखा नहीं है, लेकिन श्लोक तस्यः दैवमुक्तस्य पशुपदवीं तदनुचरः परिधावन्तो निशि निशि तम समये तमसा वृतया मनधिगत पशव आकस्मिकेन विधिना केदरान् विरासनेन मृगवराहादिभ्य सरक्ष्यमाणमङ्गिराः प्रवरसुतं पश्यन्। इसका अनुवाद पढ़ लेता हूं। डाकुओं के सरदार ने बलि के लिए एक नर पशु पकड़ा, किंतु वह बचकर निकल भागा और सरदार ने अपने सेवकों को उसे ढूंढने के लिए आज्ञा दी। वे विभिन्न दिशाओं में दौड़े किंतु उसे ढूंढ न सके। अर्धरात्रि के गहन अंधकार में इधर उधर घूमते हुए वे एक धान के खेत में पहुंचे, जहां उन्होंने अंगिरा वंश के एक ब्राह्मण कुमार जड़ भरत को देखा, जो एक ऊंचे स्थान पर बैठे कर मृग तथा जंगली सुअरों से खेत की रखवाली कर रहा था। एक ही साथ में आप लोग को मेरा पीछे फिर दूसरा श्लोक को उच्चारण करते हैं, एक ही साथ में शब्दानुवाद। अथ तत्पश्चात ते हुए सरदार के सेवक एनम इस जड़ भरत अनवद्य लक्षणम मंद पशु से लक्षण वाला, क्योंकि उसका शरीर सांड जैसा मोटा था और वो बहरा तथा गुंगा था। अब मृष्य पहचान कर भद्रु कर्म निष्पतिम अपने स्वामी के कार्य की सिद्धि मन्य मानते हुए मतलब समझकर बदभ्या बांधकर रसनया रस्सियों से चंडिका गृहम देवी काली के मंदिर पे उपनयन्यों ले आए मुदा परम प्रसन्नता पूर्वक विकसित बंदना प्रसन्न मुख। अनुवाद और तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद के द्वारा। शिल प्रभुपाद की ठंडा बहुत कम हो गया, फिर भी आवाज कम है। प्रभुपाद जयकर बोलने से जानते हैं, प्रभुपाद ऊपर सुन के वो आपको उनका पास है, कृष्ण का पास लेने के लिए पास में खड़े हैं, आपका आवाज सुनते हुए गेट को खोल देते हैं। आप कभी किसी व्यक्ति को बोलाते हो जोरदार जोर से बोलाते हो, उसको सुनाई दिया इमीडिएटली दौड़ के भागता है आपका पास, सही। इसी प्रकार हमें प्रभुपाद के लिए जयकार करना है। शील प्रभुपाद की। अनुवाद। डाकू सरदार के सेवकों तथा अनुचर ने नर पशु के लक्षण से युक्त जड़ भरत को अत्यंत उपयुक्त समझकर उसे बलि के लिए अति उत्तम पाया। अतः प्रसन्नता के मारे उनके मुख चमकने लगे, उन्होंने उसे रस्सियों से बांध लिया और देवी काली के मंदिर में ले आए। तात्पर्य, भारत के कुछ भागों में आज भी देवी काली के सम्मुख पशुतुल्य मनुष्य की बलि चढ़ाई जाती है, तो भी ऐसी बलि केवल शूद्रों तथा डाकुओं द्वारा चढ़ाई जाती है। उनका कार्य धनी व्यक्ति को लूटना है और इसमें सफल होने के लिए वे देवी काली के समक्ष नर पशु की बलि देते हैं। ये ध्यान देने की बात है कि वे देवी पर कभी भी किसी बुद्धिमान मनुष्य की बलि नहीं देते हैं। ब्राह्मण शरीर में भरत महाराज गुंगे तथा बहर पतित होते थे, किंतु तो भी वे संसार के सर्वाधिक बुद्धिमान पुरुष थे। इतने पर भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति सर्वदा समर्पित होने के कारण वे उसी स्थिति में बने रहे और बाद के लिए लाए जाने पर उन्होंने किसी प्रकार का विरोध नहीं किया, जैसा कि पिछले श्लोक में हमें ज्ञात है। वे इतने बलि थे कि चाहते तो रस्सियों से बांधे जाने से अपने को आसानी से बचा लेते हैं, किंतु उन्होंने कुछ भी नहीं किया। वे अपने रक्षा के लिए भगवान पर पूरी तरह आश्रित थे। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर परमेश्वर के प्रति समर्पण का वर्णन का इस प्रकार करते हैं। मारो भी राखो भी जो इच्छा तो हारा नित्य दास प्रति तुआधिकार। हे ईश्वर, मैंने आपको आत्मसमर्पण कर दिया है, मैं आपका शाश्वत सेवक हूं, और यदि आप चाहें तो मुझे मारे या मेरी रक्षा करें, प्रत्येक दशा में मुझ पर आपका अधिकार है। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरन मिलितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वंदे अहम श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजतं सहगण रघुनाथानीतं तं सजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादन सहगण ललिता श्रीविशाखानीतांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचनी गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदाळे, कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। प्रातः भागवत कक्ष में आप सभी को कृष्ण बलरंग का मंदिर का ओर से हम हार्दिक स्वागत करते हैं। इतना जल्दी प्रिपेयर नहीं हुआ था इधर क्लास देने के लिए, लेकिन क्षमा करना क्योंकि कल रात को 8 बजे धर्मात्मा प्रभु ने बताया, तो आप बताओ टाइम कहाँ मिला। रात को 8 बजे बताया और 9 बजे सोने का टाइम होता है, सुबह 3 बजे उठना होता है, 2:30 बजे जाग गया। तब तो जाग के फिर सुबह का, आप जानते हैं सुबह का कार्यक्रम क्या होता है, कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया। कोई त्रुटि रहेगा तो क्षमा करना, क्योंकि ये सारा चीज़ का भागवत बोलना है तो कम से कम एक दिन का पहले इसको पूरा ध्यान रखना होता है। कोई भी भक्त हो जाए, कितने बड़े महाराज लोग क्यों नहीं होते हैं, फिर भी उनको एक दिन का पहले प्रिपेयर करना होता है, कम से कम एक दिन। एक श्लोक का ऊपर प्रिपेयर करने के लिए 6 घंटा आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके श्लोक का ऊपर कुछ चर्चा कर सकते हैं। और आज का जो श्लोक है, ये श्लोक से हमें आगे की तरफ बढ़ना है, पीछे का तरफ नहीं। पीछे आप लोग सुन चुके हैं जिस प्रकार जड़ भरत, लेकिन मेरा आपको इतना ही बताना चाहता हूँ। पहले तो आप लोग का मोबाइल को कभी आवाज़ नहीं देना चाहिए, पहले ध्यान रखिए। बहुत सारे लोग होते हैं कथा चलता है फिर बीच बीच में मोबाइल घंटी चलता रहता है, देखे है, इसलिए मोबाइल का आवाज़ मत दीजिएगा कभी भी क्लास में आते हैं। आप ये मंदिर पे नहीं, वृंदावन में नहीं, ऑल ओवर इंडिया में कोई भी कोना कोना में जाता हूँ, हर जगह पे देता हूँ, तो लेक्चर में पहले यहाँ पे नोटिस बोर्ड लगता है और ये नोटिस को रूल को पालन करते हैं। हर मंदिर पे लिखा होता है, हमारा मंदिर पे लिखा हुआ था कुछ दिन, अभी हम बोर्ड हटा दिया क्योंकि हमें साधु बन चुके हैं। ये जो श्लोक है, ये श्लोक से दो चर्चा आता है, 3 चर्चा होगा। पहले साधु, दूसरा समर्पण, तीसरा समर्पण मतलब शरणागति, और तीसरा है भगवान रक्षा करता, कैसा रक्षा करते हैं। 3 चीज का ऊपर चर्चा करना है, इसलिए यहाँ पे प्रभुपद मेंशन करते हैं, मारो भी राखो भी जो इच्छा त्योहार नित्य दास प्रति त्वा अधिकार। और जो भरत महाराज का कितना जन्म हुआ था, कोई बोलता है 2, कोई बोलता है 3, लेकिन हिसाब से देखा जाए तो 3 हुआ ना। हिसाब से पहला जन्म भरत महाराज किसका बेटा, ऋषभदेव पिताजी महान है जो कि स्वयं भगवान का अवतार, लेकिन पुत्र भरत महाराज पहला जन्म। दूसरा हिरण, तीसरा जड़ भरत। लेकिन देखिए थोड़ी सी गलती तो नहीं कहा जा सकता है, आसक्ति का कारण इनको 3 जन्म। गलती भी समझ सकते हैं, आसक्ति भी समझ सकते हैं, कारण से 3 जन्म, इतने महान आत्मा होने का नाते उनको 3 जन्म मिला। तब आप खुद का ऊपर लीजिए ये चीज को, तो हमारा कितना जन्म होगा। और भरत महाराज गंडकी नदी जो कि तीर्थ माना जाता है, शालिग्राम जहां प्रकट होते हैं, गंडकी नदी नेपाल पे, तब वो तीर्थ स्थान में रह के फिर भी उनको 3 जन्म। तब हम लोग अब सोचो, थोड़ा सोच कर देखिए हमें कितने कितने गलती करते जा रहा है, कितने कितने गलती करते जा रहा है। गलती को कभी भी हमें पश्चाताप नहीं करते हैं, अनुतप तो नहीं करते हैं, इसे शिक्षा मिलता है। फिर स्वयं नारद जी को भी 3 जन्म मिला, जानते हैं नारद जी का 3 जन्म हुआ, कितने भक्तों मालूम है, प्रभु जी को मालूम हो रहा है। और तीन जन्म नारद जी को, नारद जी गंधर्व थे स्वर्गलोक में के गंधर्व, अभिशाप ब्रह्मा जी का अभिशाप से उनको क्या जन्म मिला, फिर दासी पुत्र महान, ये भी कहा जाएगा सत्यावेश अवतार नारद जी। फिर दासी पुत्र से क्या बने, फिर नारद बने। नारद बने मतलब क्या है, दासी पुत्र से देवता का पुत्र बन गए, ब्रह्मा जी का पुत्र बन गए ना, दासी पुत्र से देवता का पुत्र बन गए। तब देखिए ऐसे ऐसे महान साधु संत का हिसाब से देखा जाए, इन लोग को तो तीन जन्म और हम लोग को कितना जन्म मिलेगा, थोड़ी से कुछ गलती कुछ ये करने से। तब जब जड़ भरत को पिताजी चाहते थे कि वो ब्राह्मण है, ब्राह्मण होने का नाते थोड़ा तो शिक्षा दीक्षा देना होता है, तो पिताजी बहुत सोचने लगे उसको कैसा ब्रह्मचारी बनाना है, ब्रह्मचर्य पालन कैसा करना है, और ब्राह्मण का परिवार में जनेऊ संस्कार होता है, जनेऊ संस्कार होता है, त्रिसंध्या करना पड़ता है, वो भी शिक्षा। तो पिताजी सोचने लगे उनको इसी प्रकार पढ़ाएं और इसको भी जनेऊ संस्कार कर लेते हैं। जब जनेऊ संस्कार हुआ उनको गायत्री करने के लिए, और गायत्री 4 महीना तक याद नहीं रख पाए, मतलब वो तो एक ही क्या बोल रहे हैं इसको, क्या कहा जाएगा, एक्टिंग, क्या उनको याद नहीं हो सकता था, लेकिन जड़ भरत एक्टिंग कर रहे हैं, संपूर्ण गुंगा बेहरा सब बन चुके हैं। तब पिताजी जब देहांत तो हो गए तो भाई लोग उनको लेके बोले, ये तो बहुत मोटा छोटा है, सांड जैसा है शरीर मिला है, उसको सेवा दिए। क्या सेवा, खेत में काम करने के लिए, खेती करना है। तब काम जब तक उनको रोका नहीं जाता था तब तक वो काम चलाते थे। ऐसा नहीं बोला जाता था कि ब्रेकफास्ट हो गया 9 बजे आ जाओ, जब तक ब्रेकफास्ट का टाइम नहीं बोला जाता था वो काम करते थे। खुदाई करने के लिए काम बोल दिया जाएगा ना, वो खोदते रहेंगे, गढ़ा पूरा खोद देंगे, समुद्र जैसा बना देंगे, और कभी कभी पर्वत वहां जहां पे गड्ढा है उसको क्या करने के लिए, मिट्टी डालने के लिए बोल दिया जाएगा, तब तो उन्होंने पूरा पहाड़ बना देंगे, हिमालय जैसा पहाड़ बना देंगे, रुकावट नहीं कुछ भी, ऐसा ही काम। तब लास्ट में उनको क्या किया गया, उनको खेत को देखभाल करने के लिए भेजा गया, भाई लोग सेवा दिए खेत को देखभाल, क्योंकि वहां पे हिरण आके खेत खा जाते थे और सुअर इस प्रकार और चिड़ियां भी। तब उन्होंने क्या किया, जाके खेत का जो होता है क्या बोलते हैं बांध, जो भी आप समझो हमारा हिंदी भाषा में ये नहीं है, हम लोग तब यहां पे कहते हैं, वहां पे जाके वो सो जाता था और क्या बोलता था, जब चिड़िया का झांड आ जाता था झुंड झुंड को देखकर कहते थे, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाए चिड़िया भर भर के पेट। तब जाके तब जड़ भरत को वही खेत से पकड़ लिए, इनको पकड़ के देवी मंदिर भद्रकाली मंदिर को लेकर गए बलि चढ़ाने के लिए। तब बलि चढ़ाने के टाइम पे वो संपूर्ण समर्पण के भाव देखिए, काल तो महाराज चर्चा किए थे इस प्रकार समर्पण संपन्न, कुछ भी बोलते नहीं, पूरा मौन व्रत, कोई कुछ भी बोल रहा है सुनते नहीं, और आगे पीछे फिर भी हो सकता है, इसमें वर्णन नहीं है, हो सकता है आंख बंद कर लिया होगा जब खड़क उठाया उस घड़े में, वो भी पता नहीं, लेकिन मेंशन नहीं है, पूरा मुख और बेहरा बन चुके हैं। इस भाव को ग्रहण करने के लिए हम खुद अपना जीवन में उतारने के लिए शास्त्रगत प्रमाण दिया जाता है, इसको हम जीवन में उतारना है कैसा, संपूर्ण शरणागति का भाव। जब तक शरणागति का भाव नहीं, तब प्रभु का दर्शन, प्रभु का धाम को जाना, प्रभु को मिलना आसान नहीं। पहला शरणागत, सभी शास्त्र में आप देखिए भक्ति विनोद, कितना भक्ति विनोद ठाकुर कितना भजन लिखे, सारी भजन का जो गुह्य है वो शरणागत, शरणागत का एक किताब भी निकले है, शरणागत का एक किताब, सिर्फ भजन ही भजन, भजन जो है श्रीमद् भागवत का निचोड़ है, सिर्फ भजन गा के इसको समझिए, पहले जितने से भजन है सभी मतलब माखन जैसा दूध से निकाला हुआ, ये भजन को अच्छा से हमें समझना चाहिए, सभी भजन भक्ति विनोद ठाकुर। तब शरणागत तुमी रक्षक आर पालक अमर तुम्हारा चरण बिना आशा नहीं आर, प्रभु ही रक्षा करता है और आप भी हमारा पालक करता हो, तुम्हारा चरण बिना आशा नहीं मोर, हमारा और कोई आशा नहीं होना चाहिए, और भगवान का चरण प्रति आसक्त होने का नाते हमें निराश भी नहीं होना चाहिए, भगवान जरूर रक्षा करेंगे, इसलिए भगवान भगवद गीता में स्टाम्प लगा दिया, भगवद गीता में स्टाम्प लगाया, भगवद गीता का 4:9 श्लोक में क्या लिखा, 8 श्लोक में क्या लिखा, परित्रणाय साधुना, साधु को रक्षा करने के लिए मेरे को यह धरती में आना पड़ता है। जब तक आत्मसमर्पण पर नहीं है उसको साधु भी नहीं कहा जाएगा, आत्मसमर्पण में नहीं है, अपना कामना वासना के लिए साधु बन गया ये भी नहीं, भरत महाराज का शिक्षा ही है। फिर ध्रुव महाराज का चरित्र में हम देखेंगे, ध्रुव महाराज खुद संपूर्ण समर्पण हो गए, जब रो रो के जाके सुनीति को बताने लगे, तब सुनीति ने क्या कहा, जाओ जंगल में तपस्या करो, भगवान का शरण पे चला जाइए, कोई ऐसा माँ है बोलेगा जो कि आप भगवान का शरण में चला जाइए, माँ लोग बोलेंगे क्या बोलेंगी, नौकरी करो पढ़ाई करो अगे नहीं पैसा कमाओ, सुनीति जैसा माँ। फिर विभीषण जब गया था, रावण ने पैर से हटा कर निकाला, तब विभीषण पहला किसका पास गए, अपना माँ के पास, तो माँ ने उपदेश दिया, क्या उपदेश, राम का शरण में चला जाओ, ये शिक्षा हमको। फिर और भक्ति से ही प्रभु मिलते हैं, ये भी प्रमाण है, कोई जात पात नहीं देखा जाता है, भक्ति से ही प्रभु मिलते हैं, कोई जात नहीं देखा जाता है, ये ब्राह्मण कुल के है भगवान मिलेंगे, ये क्षत्रिय काल कुल का है भगवान मिलेंगे, ऐसा नहीं, कोई जात पात भी प्रभु नहीं देखते हैं, सिर्फ समर्पण भाव होने से प्रभु प्राप्त होते, समर्पण भाव और कुछ नहीं। देखिए दो भक्त है जो कि असुर कुल के थे लेकिन भक्ति भाव में आगे थे, संपूर्ण समर्पण, दो भक्त का नाम बताइए जो असुर कुल में जन्म लिए, एक ही प्रहलाद और एक ही विभीषण भी ला सकते हैं, वली ये तो एक ही परिवार का हो गया, वली तो उन्हीं का परिवार का हो गया, लेकिन दो ये स्वीकार के देखा जाए तब दोनों समझो तीनों भी हो गया, लेकिन असुर कुल में है कि समर्पित संपूर्ण। प्रहलाद महाराज के लिए कितने कष्ट आया, हमारा जिंदगी में इतना कष्ट नहीं आएगा प्रहलाद महाराज के लिए जितना कष्ट मिला है, लेकिन समर्पित भाव था, संपूर्ण समर्पित होना। हमारा तो समर्पित किस में है, हम जब भी समर्पण होते हैं
कितना दिन के लिए समर्पण? कोई भी चीज के लिए हमें समर्पण, मतलब समर्पण मतलब आत्मनिवेदन करते हैं कि संकल्प लेते हैं, कितना दिन के लिए होता है? थोड़ा दिन के लिए, ये समर्पण नहीं है। संपूर्ण समर्पण में प्रभु को प्राप्त करना है, प्रभु को प्राप्त करना है। त्रिवार सत्य करके बोलो भगवान मिलेंगे।
निज बल चेष्टा प्रति भरसा छड़िया, तुम्हारा इच्छाएं अच्छे निर्भर करिया।
अपना बल और चेष्टा के प्रति भरोसा को छोड़ देना चाहिए, लेकिन हम चेष्टा करते हैं, हाँ हो जाएगा, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, हम बड़ा बन जाएंगे। अपना का भरोसा, इसमें प्रश्न आ सकता है, हिरण का शरीर में होते हुए तो प्रभु को प्राप्त कर सकते थे, क्यों नहीं? तो भगवान का कृपा का ऊपर डिपेंड। जब तक तो भगवान का कृपा नहीं होता है, तब तक भगवान का कृपा का ऊपर याचना करना पड़ेगा। भगवान दैवी हस्या गुणमय मम माया दुरतया, भगवान का ऊपर निर्भर करना पड़ेगा, कृपा का ऊपर याचना करना पड़ेगा। हमारा बल, हमारा बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है थोड़ी क्षण में, एक सेकंड में बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है, एक सेकंड में। कितने भी तपस्या करो, एग्जाम्पल देते हैं ब्रह्मचारी के लिए, एग्जाम्पल देते हैं 10 साल हो गया आप एक बटर को, बटर बटर मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, माखन, माखन को फ्रिज में रखिए 10 साल तक, थोड़ी से एक सेकंड के लिए ओपन कर लीजिएगा, बटर क्या होगा? पिघल जाएगा। ब्रह्मचारी का वही है, ब्रह्मचारी का स्थिति यही है, एकमात्र एक सेकंड में ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाएगा, एक सेकंड में। अब ब्रह्मचर्य कितने कठोर तपस्या करना पड़ता है, एक ही साथ में, एक ही रूम में कोई ब्रह्मचारी के साथ कोई लेडीज रह जाए, एक सेकंड में पिघल जाएगा। मन से हो, शारीरिक से हो, बातचीत से हो, इमिडिएटली। चलो अपना चेष्टा कर पति नहीं, भगवान से प्रार्थना करना पड़ता है हर दिन सुबह उठते हुए। तो हमें नित्यानंद प्रभु को प्रार्थना करना चाहिए, नित्यानंद प्रभु बहुत कृपामय है। तब निज बल चेष्टा प्रति भरोसा छड़िया, तुम्हारा इच्छा है, ये प्रभु का इच्छा है। संपूर्ण समर्पित जब व्यक्ति होता है, सब कुछ सुख में हो दुख में है जब आता है, ये सब कुछ प्रभु का इच्छा समझ लेना चाहिए। व्यक्ति सोचता है भगवान क्यों दुख दिया, ये भक्त के लिए दुख नहीं है, परीक्षा होता है, दुख नहीं है परीक्षा। प्रहलाद महाराज के लिए परीक्षा हुआ, ये दुख नहीं है। इसलिए भगवान का इच्छा, ये सब कुछ होता है भगवान का इच्छा से। अपना चेष्टा नहीं करना चाहिए, वो भी भरोसा नहीं करना अपना बुद्धि का ऊपर कभी भी। ये शरणागति, इसका बाद आता है, इसका बाद आता है साधु का, साधु के साथ शरणागति होना है, किस प्रकार साधु बनना चाहिए। तब साधु का अर्थ क्या है? साधु शब्द का निर्माण साध शब्द से हुआ है। साध शब्द के दो अर्थ है, समाप्त करना मतलब पूरा करना, और दूसरा अर्थ होता है जीत लेना बा बॉस में करना, इसको साधु कहते हैं। जो बॉस कर लेता है, अपना इंद्रियों को बॉस में करता है, इसको साधु कहता है। और पूरा करना, दूसरा अर्थ कहते हैं पूरा करना, संपूर्ण कार्य को निपट देना, कोई काम दाम का प्रति आसक्त नहीं होना, उसको साधु कहते हैं। इस प्रकार साधु शब्द के भी दो अर्थ निकलते हैं। ऐसा व्यक्ति जो इसी जीवन में अपने बारंबार जन्म तथा मरण के चक्र को समाप्त करना चाहता है, अथवा ऐसा व्यक्ति जो इसी जीवन में अपना कार्य पूरी करना चाहता है, जिस कार्य के लिए वह पुनः मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, जिसके लिए मनुष्य जीवन मिला है, वो कार्य करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को आप पूछेंगे मनुष्य जीवन मिला क्यों, क्या बताते हैं? आप लोग प्रचार में जाते हैं तब क्या बताते हैं? मतलब दुकानदारी करना है, ये बोलते हैं ना, बिजनेस करना है, सेवा करना, मतलब और कुछ काम करना है। भाई जन साहब हमें भोजन करें तो हमारा काम धंधा कौन करेगा? मनुष्य जीवन इसके लिए नहीं मिला, मनुष्य जीवन मिला है प्रभु को प्राप्त करने के लिए, प्रभु का धाम को चला जाने के लिए। जब तक मनुष्य शरीर नहीं होता है तब तक भी, इसलिए स्वर्ग लोक का देवता लोक भी मनुष्य जन्म को प्राप्त करने के लिए मर्त्य लोक में भगवान से प्रार्थना करते हैं। और मर्त्य लोक टू गोलोक जाने के लिए लिफ्ट है, गोलोक जाने के लिए, इसीलिए देवता लोक यहां पे आना पड़ता है मनुष्य शरीर को प्राप्त करके फिर गोलोक जाते हैं। तो दूसरा अर्थ में साधु का अर्थ कहते हैं ऐसा व्यक्ति जो अपने भक्तिमय आचरण तथा स्वभाव से उन श्री कृष्ण के जीत लेता है अथवा उनको अपने वश में कर लेता है, जिन्हें किसी अन्य उपाय के द्वारा न तो जीता ही जा सकता है और न ही उन्हें वश में किया जा सकता है। और प्रभुपाद की साधु को दूसरा अर्थ में कहते हैं साधु मतलब पवित्र पुरुष, प्रभुपाद मेंशन करते हैं साधु मतलब पवित्र पुरुष। और भगवान को प्राप्त करने के लिए सिर्फ भक्ति ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। कहते हैं श्रीमद् भागवत में एकादश स्कंद 11 अध्याय श्लोक नंबर 20 और 21 में, न साधयति माम जोगो न संख्यम धर्म उद्धव न सुधाय तपस्त्यागो यथा भक्तिर मम अर्जितः। कितना भी साधना कर ले, कितना भी जो कर ले, कितने भी सुधाय, सुधाय मतलब क्या है, पढ़ना सुधाय, और कितना त्याग कर ले, इससे नहीं, भगवान भक्ति में वशीभूत होते हैं, भक्ति में। लेकिन पहले हमारा भगवान का प्रति विश्वास होना चाहिए, भगवान का ऊपर संपूर्ण विश्वास होना चाहिए। भगवान का ऊपर विश्वास नहीं तो भगवान का नाम का ऊपर विश्वास नहीं होगा, ये ध्यान रखिए। भगवान का ऊपर विश्वास नहीं तो भगवान का नाम का प्रति विश्वास नहीं होगा, क्योंकि हमें जानते हैं नाम अनामी अभेदन है। तो भगवान का ऊपर विश्वास है तो मतलब भगवान का नाम का प्रति विश्वास, जब विश्वास हो जाता है भगवान जरूर रक्षा करते हैं। एक छोटी से कहानी बता रहा हूं, वो तो अच्छा कहानी है, सुनने में अच्छा लगेगा आप लोग को। एक तालाब में बहुत सारा मछलियां होते हैं, बहुत सारा मछली है, ये संपूर्ण कैसा विश्वास है उनका भगवान का प्रति। तब एक स्त्री मछली और एक पुरुष मछली, स्त्री मछली तालाब का किनार पे आके कुछ लोग कुछ वार्तालाप कर रहे थे, उसको सुना। क्या वार्तालाप कर रहे थे? ये तालाब पे बहुत मछली है और काल आते हैं सुबह, मछली को पकड़ते हैं, जाल लेकर आते हैं, मछली को पकड़ते हैं और लेकर हरिबोल करते हैं। तब स्त्री मछली ने ये लोग का आवाज को सुन के जाके पुरुष मछली को, अपना पति समझो, पुरुष मछली को बताया, बोला देखो काल सुबह होते हुए हम मरा जाएंगे, इसलिए अच्छा कल्याण होगा यहां से निकल जाते हैं, दूसरा जगह में रहेंगे तो हमें बच जाएंगे। पति मछली ने बोलता है भगवान का ऊपर विश्वास रख, जो होगा भगवान का इच्छा से होगा और भगवान कल्याण करेंगे हमारे के लिए, कोई विश्वास रखो। तब दूसरा दिन सुबह होते हुए, दूसरा दिन सुबह होते हुए तब जाल लेकर आगे और पकड़ने लगे। फिर स्त्री मछली बोलने लगा पति को, देखा मैं बोल रहा था ना यहां से निकल जाते थे, देखा अभी पकड़ जाएंगे, अभी पकड़ जाएंगे। जब जाल बिछाया दोनों को, दोनों पकड़ गए। जब दोनों पकड़ गए फिर भी जाल का अंदर होते हुए फिर भी स्त्री मछली पति मछली को बता रहा है, बोला देखा आपको बता रहा था ना, आप मानते नहीं कुछ भी। कभी कभी होता है ना, कभी कभी पत्नी बोलती है तो पति नहीं मानता है तो कुछ नहीं मानते हो, अभी तो मरा जाएंगे, अच्छा होगा मर जाएंगे, अभी आपको बोल रहा था मेरा बात नहीं सुनते हो। तो फिर भी पति मछली बोलते हैं विश्वास रखो, भगवान का पर भरोसा रखो। तब जाल में उठा के जो मछली को पकड़ा, ये दोनों मछली को, और बहुत सारे मछली पड़े थे लेकिन ये दोनों मछली को जो आदमी पकड़ रहा था वो आदमी अपना जेब में डाला, अपना जेब में, जेब मतलब क्या है, बैग होगा। आप लोग को इधर तो आप लोग को मालूम नहीं मछली पकड़ने के लिए क्या होता है, उड़ीसा में होता है खड़ाई होता है, उड़िया भाषा में ऐसा गोलाकार होता है देखोगे तो मालूम पड़ेगा होता है। उसका अंदर घुसाया, अपना बैग के अंदर घुसाया दोनों को दोनों, और ज्यादा कुछ नहीं, और बोल रहा है मछली पकड़ के दोनों को बैग में रख के बोल रहा है आज तो अच्छा सब्जी बनेगा, बहुत टेस्ट लगेगा। तब पत्नी मछली फिर बोल रहे है, बोले देखा मैं आपको बता रहा था इतना तक आए तो यहां से कैसा निकालने के लिए उपाय तो कर। फिर भी पति मछली बोल रहा है विश्वास रख। फिर उन्होंने लेकर गया बैग को, लेके बैग को लेकर जाके अपना पत्नी को दिया, बोला देख ये दोनों मछली लेकर आया, अच्छा से बनाना, मसाला मछली में लेकर आता हूं दुकान से। पत्नी का सामने रख दिया बैग को, रखा और पत्नी ने बैग को निकाला, बैग से निकाला, निकला, निकलने के बाद आप लोग को इधर होता है तो चाकू होता है, उड़ीसा क्षेत्र में क्या होता है पन्नी के होता है, क्या बोलते हैं हिंदी में हसुआ, जो भी ये होता है, उसका सामने बैठ गए। बैठने का पहले कुछ रेत लाना चाहता था क्योंकि रेत नहीं लगाएगा तो हाथ से फिसल सकता है। तब रेत लेने के लिए गए हैं, फिर भी पत्नी मछली पति को बोल रहा है देखा अभी तो कटी जाओगे, मजाक उड़ा रहा है, बोला कटी जाओगे अभी देखा आपका सामने है हथियार। फिर भी पति मछली फिर भी कुछ नहीं बोल रहा है, बोला देखो विश्वास रख। तब मछली दोनों को दोनों हिल रहे थे ऐसा, दोनों को दोनों। तब उसी समय पे एक चील आया, चील समझते, चील क्या बोलते हैं, चील बोलते हैं ना, हाँ चील इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ईगल, ईगल आया। वो ईगल आके दोनों पैर में दोनों को उठा के उड़ने लगा, दोनों पैर में दोनों को उठा के उड़ने लगा। फिर दोनों तो पैर पास पास में है, दोनों मछली को पकड़ा है। तब फिर पत्नी मछली पति को बोल रहे देखा वहां तक बच गए लेकिन इससे बचने वाले नहीं, ये तो चोंच को मारते 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 वहां से तो हमें कट जाते, एक ही सेकंड में मर जाते वो अलग बात है, लेकिन यहां पे चोंच को काटते काटते मारते मारते हमको बहुत यंत्रणा देगी। फिर भी पति मछली बोल रहे विश्वास रख। तब वो ईगल उड़ते उड़ते गए, जब ऊपर में उड़ रहा है तब वहां से और एक ईगल आ गया, वहां से और एक ही ईगल आ गया। देखा एक ईगल दोनों मछली को पकड़ा है दोनों पैर में, तब दूसरा ईगल सोचने लगा और वो अकेला तो खा नहीं सकता, उसको फाइटिंग करके मैं भी लेना चाहता हूं। दूसरा ईगल ने इसका साथ क्या किया, और जो उड़ रहा था उसका नीचे वो भी तालाब था कि समुद्र था कि पानी का कुछ भी, तब दोनों ईगल जब फाइटिंग किए झगड़ा करने लगे तब मछली अपना आप गिर पड़े पानी में। तब पति मछली
पत्नी को समझाया, देखा विश्वास हुआ ना, राखे कृष्ण मारे किए, मारे कृष्ण विश्वास रखो। संपूर्ण शरणागति यही है, कहने का अर्थ है साधु अपना चेष्टा के प्रति ये करेगा तो कुछ नहीं कर सकता, प्रभु का ऊपर भरोसा रखो। जड़ भरत का हाल वही आगे जाकर होगा, अभी कुछ नहीं हुआ आगे जाकर होगा, वो अपना आप छूटेंगे। बाद साधु शब्द के बाद आता है परित्राणा, गीता का ऊपर मैं कोटेशन कर रहा हूं।